पिछले पाठ में समय हो जाने के कारण जो है मैं शब्द बोध नहीं बता पाया था, तो क्रमादमुम नारद इति बोधि सह इस वाक्य का शब्द बोध क्या होगा तो वो बता रहे हैं। इसमें जो क्रमात् पद है उस क्रमात् पद का अर्थ है शब्द बोध में सामान्य विशेष ज्ञान पूर्वक। पहले क्या होता है सामान्य का ज्ञान, जब दूर से नारद जी को आते हुए देखा भगवान कृष्ण ने तो वो बहुत दूर में जब थे तो कुछ स्पष्ट छवि वबि नहीं दिखाई दी थी, तो सामान्य ज्ञान हुआ कि कोई है कोई आ रहा है तो ये, और फिर धीरे धीरे जो जो पास आते गए फिर विशेष ज्ञान होता गया है, उनका वस्त्र दिखने लगा, हाथ पांव दिखने लगे, उनकी दाढ़ी दिखने लगी, उनके तिलक दिखने लगे, वीणा दिखने लगी, इस तरह से सामान्य विशेष ज्ञान जो है वह क्रमिक ज्ञान का ही अर्थ बताया यहाँ पर। और यह पूर्वक माने पूर्व में सामान्य विशेष ज्ञान होता है, वही कहा कि सामान्य विशेष ज्ञान पूर्वक है, इसमें भी क लगा हुआ और ये भी जहाँ कहाँ जाएगा अंतिम जो विशेष है व्यापार है उसी का यह सब विशेषण बनेगा। जैसा कि आपको मालूम है व्याकरण मत में व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है, माने मुख्य विशेष जो है शाब्द बोध में व्यापार रहेगा और सारे जो हैं पीछे वाले वो उस व्यापार के ही विशेषण होंगे। तो आप चाहे तो सब में व्यापार को जोड़ सकते हैं, जैसे सामान्य विशेष ज्ञान पूर्वक व्यापार है माने ऐसा व्यापार जिसमें सामान्य और विशेष ज्ञान पूर्व में हो। फिर है एक नारद, क्रमादमुम नारद इत्यबोधिसः नारदः विसर्ग का यत्व ये लोप हो गया है संधि हो करके, तो नारदः में एक वचन है तो एक नारद अर्थ हो गया। और यहाँ पर अबोधि में जो बुध धातु है उस बुध धातु का अर्थ क्या है, ज्ञानानुकूल व्यापार। तो ज्ञान का विषय यहाँ पर कौन है, मैंने सिखाया है आपको कि जिसका ज्ञान होता है वह ज्ञान का विषय होता है। यहाँ पर कृष्ण जी को नारद का ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान का विषय क्या होगा, नारद होगा। तो इसीलिए कहते हैं एक नारद विषयक ज्ञान, माने एक नारद है विषय जिस ज्ञान में, ऐसा जो ज्ञान उसके अनुकूल, अनुकूल का अर्थ जानते हैं आप जनक है, माने उस ज्ञान का जनक, फल का जनक व्यापार तो होता ही है, इसमें भी आप व्यापार लगा सकते हैं कि एक नारद विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार है, क्योंकि सबका विशेष्य जो है वह व्यापार ही है। फिर आगे लिखते हैं कि कृष्णा भिन्नाश्रय कह, ये जो सह जो आया है क्रमादमुम नारद इत्यबोधि सह, उस सह का अर्थ कृष्ण है ये मैंने बताया था, तो सह का अर्थ हो गया कृष्ण। और तिंग विभक्ति जो है ये आख्यात जो है उसका अर्थ हो गया आश्रय, कौन सा आश्रय, कर्ता वाला व्यापार आश्रय, उसमें कृष्ण का जो है अभेद संबंध से अन्वय होगा तो अभिन्न लग जाएगा, तो कृष्ण अभिन्न आश्रय संधि करेंगे तो कृष्णा भिन्न आश्रय, इसमें भी क प्रत्यय लगा दीजिए, क प्रत्यय लगाने पर वो बोबरी समास हो जाता है, उसका बाला अर्थ होता है, तो कृष्ण से अभिन्न आश्रय बाला, यहाँ भी व्यापार लगा लीजिए कृष्णा भिन्न आश्रय को व्यापार है, इस तरह से देख रहे हैं ना सबका विशेष व्यापार ही है। फिर अतीतो व्यापार है, ये अतीत क्या हुआ, भूतकाल में जो होता है ना भूतकालिक अर्थ होता है अतीत का, तो ये अतीत अर्थ कहाँ से आया, तो अबोधी में जो लुंग लकार हुआ हो रखा है उस लुंग लकार तो अतीत अर्थ में ही होता है, भूत अर्थ में ही होता है, तो उसका अर्थ है अतीत, आ व्यापार तो धातु का अर्थ है ही। तो इस तरह से सामान्य विशेषक ज्ञान पूर्वक एक नारद विषयक ज्ञानानुकूल कृष्णाभिन्नाश्रय कोतीतो व्यापार इति बोधा, बोधा माने शाब्द बोधा, ऐसा जो है शाब्द बोध होता है। तो आपने इसमें देखा ना कि कर्ता जो कृष्ण है उसी का बोध हो रहा है, कर्म जो है उसका बोध नहीं हो रहा है आख्यात के द्वारा, क्योंकि कृष्णाभिन्नाश्रय कहा उसका आख्यातकार आश्रय है, वो किससे अभिन्न है, कृष्ण से अभिन्न है माने कर्ता से अभिन्न है, तो यहाँ पर कर्ता का ही बोध हुआ। फिर आगे कहते हैं यथोचितम इति, कारिका में यथोचितम ज्ञेयम जो कहा था उस यथोचितम की व्याख्या करते हैं कि सकर्मक धातु संव्याहृत भाव साधारण विधि विधेय चिन्ह यगादि कर्म द्योतकम इति भावाम, हमने भी कारिका का अर्थ बताते समय में कहा कि यथोचित समझना चाहिए, यथागम समझना चाहिए माने जैसा शास्त्र का अनुशासन है उस तरह से समझना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रसंग में शास्त्र का क्या अनुशासन है, तो उसको ये बता रहे हैं कि ये जो चिन्ह यक आदि जो है ना, ये सकर्मक धातु और अकर्मक धातु, दो तरह की धातु होती है। कर्म जिसमें रहे वह होगा सकर्मक धातु, कर्म जिसमें न रहे वो हो गया अकर्मक धातु। तो ये कहते हैं कि सकर्मक धातु समभिव्याहृत, माने जो सकर्मक धातु है उस सकर्मक धातु से जो समभिव्याहृत है, समभिव्याहृत का मतलब होता है समीपोच्चारित, धातु के समीप में जो उच्चारित होगा उसको कहेंगे धातु समभिव्याहृत। ठीक है, तो सकर्मक धातु के समभिव्याहृत माने समीप में उच्चारित और भाव साधारण माने भाव वाच्य में भी होने वाला जो विधि है, भाव साधारण विधि माने सकर्मक धातु के समीप में उच्चारित होने वाला और भाव साधारण विधि माने और भाव वाच्य में भी होने वाली जो विधि है वो विधि कौन सी, तो विधेय चिन्ह यगादि माने चिन्ह यक आदि जो विधेय है ये सब कर्म द्योतक होता है। तात्पर्य ये निकला कि जहाँ पर सकर्मक धातु हो और वहाँ पर जो है भाववाच्य में होने वाली भी, वहाँ भाववाच्य में होने वाला भी जो कार्य है वह कार्य अगर वहाँ हो तो वहाँ कर्म का द्योतक चिन्ह यगादि होता है। अब यहाँ पर देखिए कि कमादमुम नारद इत्यबोधिशह में जो अबोधि में चिन्ह हुआ है यह भाव साधारण विधि नहीं है, क्योंकि यह भाववाच्य में ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से पच्यते उदन स्वयमेव में जो यक तंग आया है ये भी भाव साधारण विधि नहीं है। सकर्मक धातु समभिव्याहृत तो है, क्योंकि तो बुध धातु भी सकर्मक धातु है, उसमें समभिव्याहृत माने समीप में उच्चारित चिन्ह है अबोधि में। ऐसे ही पच्यते में भी पच धातु सकर्मक धातु है, उसमें समभिव्याहृत जो है यक और तंग है, किंतु यह भाव साधारण विधि नहीं है, जबकि दोनों तरह का होना चाहिए। सकर्मक धातु समभिव्याहृत भी होना चाहिए चिन्ह यगादि को और भाव साधारण भी होना चाहिए चिन्ह यगादि को, माने इस धातु से भाववाच्य में भी चिन्ह यक आदि होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं होता है, क्योंकि वो दीपजन बुद्ध सूत्र जो है ना वह कर्तृवाच्य में ही चिन्ह यक करता है, चिन्ह आदेश करता है, भाववाच्य में नहीं करता है, तो इसलिए वह भाव साधारण विधि नहीं हुई। तो सकर्मक धातु समभिव्याहृत और भाव साधारण जो विधि है चिन्ह यगादि वही कर्म का द्योतक होता है। यही है यथागमम यथोचितम ज्ञेयम, माने शास्त्रानुसार यथोचित समझना चाहिए। तो शास्त्रानुसार यही है कि जो चिन्ह यगादि सकर्मक धातु में लगा हो और भाव साधारण हो माने भाववाच्य में भी उस धातु से होने वाला हो, वही चिन्ह यगादि जो है कर्म का द्योतक होता है। चूंकि अबोधि में और पच्यते उदना स्वयमेव में वो कंडीशन नहीं है, यहाँ पर भाव साधारण विधेय चिन्ह यगादि नहीं है, इसलिए कर्म का वह द्योतक नहीं होता है और कर्ता का ही बोध होता है। तो इस तरह से वह जो आपत्ति दी गई थी कि आख्यात का अर्थ कर्ता कर्म अर्थ मानने पर दोनों का बोध होने लगेगा, उसका समाधान दिया। फिर समाधान जो दिया कि तात्पर्य ग्राहक के आधार पर हम निर्णय करेंगे, तो उसमें फिर शंका की गई, व्यभिचार की शंका की गई, फिर उसका भी समाधान दिया कारिका में कि यथागमम यथोचितम ज्ञेयम। इस तरह से वह प्रकरण जो है अब खत्म होता है। अब एक नया प्रकरण शुरू होगा, उस नया प्रकरण को शुरू करते हुए कहते हैं कि एवं सूची कटाह न्याय ना, सूची कटाह न्याय से। अब ये सूची कटाह न्याय क्या है, ये जो आचार्य के जो ग्रंथ है ना, इसको पढ़ने से बहुत ही नॉलेज बढ़ जाता है। इसमें ऐसे ऐसे शब्द, नए नए शब्द आते हैं और गुरुजी के मुख से जब उनका मतलब, उसका मतलब समझते हैं तो फिर आनंद आ जाता है। अब देखो यहाँ पर सूची कटाह न्याय बताया है। ये सूची कटाह न्याय क्या है, सूची कहते हैं सुई को, जो ना धागा से सिलते हैं उसको हुआ सूची सुई, और कटाह कहते हैं कराह को, ये जो बहुत बड़ा बर्तन जो होता है जिसमें सब्जी वब्जी बनाते हैं, लोहे का होता है, वो गाँव में देखते होंगे, उसको कटाह कहा जाता है। तो ये सूची कटाह न्याय क्या है, तो इसको समझना है कि किसी लोहार के पास दो ग्राहक जो है एक ही समय में पहुंचता है, एक ग्राहक कहता है लोहार को कि मुझे सूची बना करके दो, मुझे जरूरत है। और दूसरा ग्राहक कहता है कि मुझे कटाह बना करके दो, मुझे जरूरत है। अब वह जो लोहार है बेचारा, वो सोचता है कि दोनों एक ही टाइम पर आया है, अब किसको पहले क्या बना करके दूं। तो वो सोचता है कि सूची ही बना करके पहले दे देता हूँ, क्योंकि सूची जो है ना वो तो जल्दी तैयार हो जाएगी। और कटाह जो है उसमें तो बहुत टाइम लगना है बनने में, तो इसलिए कटाह को बाद में बनाऊंगा, एक को तो निपटा लूँ पहले, फिर दूसरे को निपटाऊंगा। तो जो जल्दी काम होने वाला होता है, सरलता से काम होने वाला होता है, उसको पहले किया जाता है। और जो कठिनाई से काम होता है, विलंब से काम होने वाला काम होता है, उसको व्यक्ति बाद में करता है। यही है सूची कटाह न्याय। अब जैसे हमारे जो ये ग्रंथकार हैं कौंड भट्ट हैं या दीक्षित जी हैं, तो दीक्षित जी ने सोचा कि हमें सब कुछ बताना है, धातु का अर्थ बताना है, आख्यात का अर्थ बताना है, फिर मुख्य विशेष्य कौन होता है ये बताना है, हमें पदार्थ भी बताना है, हमें वाक्यार्थ भी बताना है। तो इस तरह से कई तरह की बात को बताने के लिए उनके मन में आया। तब उन्होंने सोचा सूची कटाह न्याय लगाया कि जो पहले कम समय में हो सकता हो, कम परिश्रम में बताया जा सकता हो, उसको हम पहले कह देते हैं, और जो जिसमें ज़्यादा परिश्रम लगे, ज़्यादा मेहनत लगे, उसको हम बाद में कहते हैं। तो इस न्याय से जो है दीक्षित जी ने सोपपत्तिकम वाक्यार्थम उपवर्ण्य, वाक्य पहले इन्होंने वाक्यार्थ को बताया। आपने देखा ना पीछे शाब्दबोध की चर्चा हुई है कि कैसा शाब्दबोध बनता है, पचति में कैसा बनेगा, पचते में कैसा बनेगा, अबोधि में कैसा बनेगा, कौन मुख्य विशेष होगा, कौन किसका विशेषण होगा, ये सब जो है ना पहले वाक्यार्थ को उन्होंने बताया। क्योंकि वाक्यार्थ बताना जो है वह आसान था, वो सूची की तरह आसान था। और ये जो धातु का अर्थ जो है फल व्यापार होता है, इतना तो उन्होंने बताया, लेकिन फल और व्यापार अर्थ क्यों होता है, इसमें से एक ही अर्थ क्यों नहीं होता है, और कोई अर्थ क्यों नहीं होता है, इस तरह की शंकाओं का समाधान जो है वह उसके लिए विलंब लगेगा, उसको ज़्यादा समय में बताना होगा। इसलिए सूची कटाह न्याय से आसानी से जो बताने वाली बात थी वाक्यार्थ के बारे में, वो उपवर्ण्य, उसका उन्होंने पहले वर्णन किया ग्रंथ में। उसमें एक विशेषण लगाया सौ उपपत्तिकम। उपपत्ति कहते हैं युक्ति को, युक्ति मतलब तर्क, तर्क के आधार पर, प्रमाण के आधार पर। उपपत्ति माने प्रमाण भी कह सकते हैं, सोपपत्तिकम माने सब प्रमाणम, मान लो कि प्रमाण से सहित जो है वाक्यार्थ का पहले वर्णन किया सूची कटाह न्याय के आधार पर। सूची कटाह न्याय क्या है, माने जो सरलता से काम होने वाला हो उसको पहले करना चाहिए या पहले कहना चाहिए। तो इस न्याय से पहले उन्होंने वाक्यार्थ का वर्णन किया, फिर फल व्यापार यो हो इति प्रतिज्ञातम। ये फल व्यापार यो धातु आश्रय तु तिंगस्मिता, इस कारिका में जो प्रतिज्ञात था, प्रतिज्ञात माने प्रतिज्ञा में तो प्रत्यय लगा है, तो प्रत्यय का अर्थ होता है विषय, माने प्रतिज्ञा का विषय। तो प्रतिज्ञा का विषय जो इस कारिका में था क्या था, धातु व्यापार वाचित्व, माने धातु में व्यापार वाचित्व रहता है, धातु में व्यापार वाचित्व रहता है। ये त्व से अब घबराते नहीं हो ना, क्योंकि ये जो है ना आप समझ चुके हो कि त्व मतलब होता है धर्म या भाव, ठीक है। तो यहाँ पर है जैसे मान लो व्यापार वाचित्व, और बाची को भी मैंने बताया हुआ है, बाची माने वाचक बोधक, तो व्यापार बोधक इसको हम क्या कहेंगे, व्यापार वाची। और व्यापार वाची का जो भाव है या धर्म है उसको कहेंगे व्यापार वाचित्व। तो या इसका अलग शब्द में कहना चाहें तो व्यापार वाचकत्व या व्यापार बोधकत्व, यही अर्थ है व्यापार वाचित्व का। तो व्यापार वाचित्व किस में रहे, धातु में है, क्योंकि धातु का ही व्यापार वाच्य है ना, अर्थ है ना। इस तरह से धातु व्यापार वाचित्व यत प्रतिज्ञातम कारिकायाम, फल व्यापार यो कारिका में जो धातु में व्यापार वाचित्व की प्रतिज्ञा की गई थी, उस बात को अब व्यवस्थापित करेंगे आगे ग्रंथ का। फिर और कहते हैं कामा दे करके कि लडार्जन्ते भावनायाः अवाच्यत्वं वदतः प्राभाकरादीन प्रति व्यवस्थापयति। प्राभाकर, ये मीमांसा दर्शन का नाम सुने हैं आप लोग, मीमांसा दर्शन में दो मत, दो सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक कुमारिल भट्ट का सिद्धांत और एक प्रभाकर गुरु का सिद्धांत। प्रभाकर जो थे आचार्य, उनको गुरु की उपाधि जो है उनके गुरु जी ने ही दी थी। तो दो सिद्धांत बहुत मुख्य हैं मीमांसा में, कुमारिल भट्ट का सिद्धांत और प्रभाकर का सिद्धांत। तो जो प्रभाकर का सिद्धांत है उसी को प्राभाकर कहते हैं। प्रभाकर के द्वारा जो उक्त हो सिद्धांत उसको हम प्राभाकर कहते हैं, ठीक है। जैसे पतंजलि के द्वारा जो उक्त हो उसको हम पातंजल कहते हैं, उसी तरह से प्रभाकर के द्वारा जो उक्त हो उसको हम प्राभाकर कहते हैं। तो प्राभाकर आदि जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में क्या है, तो वो कहते हैं कि लडार्जन्ते भावनाया अवाच्यत्वं वदतः। प्राभाकर आदि जो है भावना में अवाच्यत्व बोलते हैं, वदतः माने बोलते हैं, अवाच्यत्व वाच्यत्व माने वाच्य माने अर्थ, और वाच्यस्य भावः वाच्यत्वं माने अर्थत्वं, और अवाच्यत्वं माने अर्थरहितत्वं, ठीक है। तो भावनायाः अवाच्यत्वं माने भावनायाः अर्थरहितत्वं, माने भावना जो है वह अर्थ नहीं है, ऐसा बोलने वाले, किसका अर्थ नहीं है, धातु का अर्थ नहीं है। हम व्याकरण लोग तो धातु का अर्थ व्यापार मानते। अच्छा, ये भी आपको याद होगा, शुरू में मैंने सिखाया है कि व्यापार भावना ये दोनों शब्द जो हैं ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो भावनायाः अवाच्यत्वं वदतः प्राभाकरादीन प्रति, माने भावनायाः माने व्यापारस्य, अवाच्यत्वं कथयतः प्राभाकरादीन आचार्यान् प्रति, माने व्यापार को जो अवाच्य मानते हैं, वाच्य नहीं मानते हैं, ऐसे मानने वाले प्रभाकर आदि जो आचार्य हैं उनके प्रति भी व्यवस्थापयति, व्यवस्था बता रहे हैं कि प्रभाकर आदि को क्यों मान लेना चाहिए, हमारी बात, हमारी बात मानना क्यों जरूरी है, इस तरह से व्यवस्था देने वाले हैं आगे के ग्रंथ में। इसमें एक शब्द आया था, उसको मैंने जानबूझ करके छोड़ा था, लडार्जन्ते। लडार्जन्ते में बहुव्रीहि समास है, अतद्गुण बहुव्रीहि समास, ये दो तरह का बहुव्रीहि समास होता है, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि और अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में अन्य पदार्थ प्रधान होता है, बाला बाली ये अर्थ प्रधान होता है, ये तो आप जानते हैं। जैसे पीताम्बरह में बहुव्रीहि समास है, ये आप लोग जानते होंगे। तो पीताम्बर का अर्थ क्या होता है, पीला अंबर बाला, अंबर कहते हैं वस्त्र को, तो पीला वस्त्र बाला। तो जो शब्द हम बोलते हैं पीताम्बर, उसमें पीत शब्द बोलते हैं, अंबर शब्द बोलते हैं, इन दो, और बोध किसका होता है, विष्णु भगवान का बोध होता है, पीत अंबर बाले जो हैं विष्णु भगवान उसका बोध होता है। तो यह विष्णु पदार्थ जो है ये क्या हुआ, अन्य पदार्थ हुआ। अन्य पदार्थ कैसे, पीत पद से अन्य पद हो गया विष्णु पद, अंबर पद से अन्य पद हो गया विष्णु पद। तो अन्य पदार्थ माने विष्णु पदार्थ का बोध होता है बहुव्रीहि समास में। ये जो है ये तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि हुआ, तद्गुण संविज्ञान मतलब विग्रह में पीतम अंबरम जस्य असौ पीताम्बर। तो विग्रह में जो पद पदार्थ आया हुआ है वह पद पदार्थ अगर बहुव्रीहि समास में उसका बोध हो तो वह वहाँ होता है तद्गुण संविज्ञान बोध। तत् से विग्रह पद पदार्थ ले लीजिए कि तत् माने तत् का गुण जिसमें रहे, तो तत् हो गया विग्रह वाला पद पदार्थ, उसका गुण जिस अर्थ में रहे। गुण का अर्थ यद्यपि विशेषण लिया जाता है कि विग्रह में जो पद पदार्थ है वह अगर गुण हो, माने वह अगर विशेषण के रूप में हो और अन्य पदार्थ अगर विशेष के रूप में हो तो वहाँ तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि माना जाता है। जैसे उदाहरण पीतम अम्बरम जस्य में तत् कौन हो गया, पीतम अम्बरम हो गया, उसका अर्थ जो है वह विशेषण है, किसका, भगवान विष्णु का, अन्य पदार्थ जो है भगवान विष्णु उसका। इस तरह से विग्रह पद पदार्थ जो है यहाँ पर गुण है और उस गुण का माने विशेषण का संविज्ञान हो रहा है, माने बोध हो रहा है जिस बहुव्रीहि समास में, वह हो गया तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। अब एक में उदाहरण, अब इसमें जो है पीताम्बरम भज, अगर कोई कहे कि पीताम्बर का भजन करो तो भजन किनका किया जाएगा, भगवान विष्णु का किया जाएगा, लेकिन वो भगवान विष्णु किस तरह के वस्त्र पहने रहेंगे, पीला वस्त्र पहने रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पीला वस्त्र का भी बोध हो रहा है और पीला वस्त्र को जिन्होंने पहन रखा है उनका भी बोध हो रहा है। तो दोनों अन्य पदार्थ का भी बोध हो रहा है और विग्रह पदार्थ जो पीत पदार्थ और अम्बर पदार्थ है उसका भी बोध हो रहा है। इस तरह से ये तदगुण संविज्ञान बोबरी हुआ। अब तदगुण संविज्ञान बोबरी में क्या होता है कि विग्रह पदार्थ का बोध नहीं होता है, केवल अन्य पदार्थ का बोध होता है। जैसे कोई कहे कि दृष्ट सागरम आनय, दृष्ट सागरम आनय, इसका मतलब हुआ कि दृष्ट सागर ये न तम आनय, माने जिन्होंने सागर को देखा हुआ है, सागर कहते हैं समुद्र को, जिन्होंने समुद्र को देखा हुआ है उनको लाइए। तो दृष्ट सागरम आनय अगर कोई कहता है तो लाने वाला किसको लाएगा, किसी व्यक्ति को लाएगा ना, जो मान लो बम्बई में रहता है और बम्बई के सागर को समंदर को जिसने देखा हुआ है उस व्यक्ति को लाएगा, आकि सागर को लाएगा, समुद्र को लाएगा क्या, समुद्र को लाना संभव है क्या, नहीं संभव है। तो दृष्ट सागर, दृष्ट सागरम आनय, यहाँ पर जो दृष्ट सागर शब्द में बहुव्रीहि समास है, यह कौन सा बहुव्रीहि है, ये अतद्गुण बहुव्रीहि समास है, क्योंकि विग्रह पद पदार्थ जो है सागर पदार्थ उसका बोध जो है समास के अर्थ में नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति का केवल बोध हो रहा है। जैसे पीताम्बरम में दोनों का बोध हो रहा था, विग्रह पदार्थ का भी बोध हो रहा था, अन्य पदार्थ का भी बोध हो रहा था, किंतु यहाँ पर विग्रह पदार्थ जो सागर पदार्थ है उसका बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका बोध कैसे होगा, संभव नहीं है ना, क्योंकि सागर को लाना संभव है क्या, नहीं है संभव। तो यहाँ विग्रह पदार्थ का बोध नहीं हो रहा है, केवल अन्य पदार्थ का बोध रहा है, माने जिस व्यक्ति ने उस सागर को देख रखा है केवल उस व्यक्ति का बोध होता है, इसीलिए लाने वाला व्यक्ति, बुलाने वाला व्यक्ति केवल उस व्यक्ति को बुलाता है। तो इस तरह से विग्रह पदार्थ जहाँ पर विशेषण के रूप में भाषित हो वहाँ पर तद्गुण संविज्ञान बोबरी होता है, और विग्रह पदार्थ जहाँ पर विशेषण के रूप में, गुण के रूप में भाषित न हो वहाँ पर अतद्गुण संविज्ञान बोबरी होता है। यहाँ पर लडाद्यंते ये शब्द जो है इसमें भी अतद्गुण संविज्ञान बोबरी है, लडादि हो अंत में जिसके, तो ये कौन होगा, किसके अंत में लडाद रहता है, धातु के अंत में, तो लडाद अंत का अर्थ होगा धातु, जैसे दृष्ट सागरम का अर्थ हुआ व्यक्ति, ऐसे ही लडाद्यंत का अर्थ हो गया धातु। तो धातु का भावना अर्थ नहीं मानते हैं प्रभाकर आदि, तो उनके प्रति भी आगे के ग्रंथ में बताया जाएगा। आज का पाठ यहीं रखते हैं।